हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान की कृपा से आप उनकी कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और साथ ही आप भगवत सेवा परायण भक्तों से अपेक्षा है कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि अपनी मति भगवान में रख सकें। आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति किस प्रकार कृपा करते हैं, और फेमस दधी चूड़ा महोत्सव के रूप में इसको हम सुनेंगे। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी की कथाएं चैतन्य चैतन्य में छीट फूट कई जगह पर है, मध्य लीला के 16वें अध्याय में उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है संक्षेप में, फिर अंत लीला के 6वें परिच्छेद में उनके गृह त्याग करके पुरी में महाप्रभु के साथ मिलने की कथा है। ये पूरा अध्याय ही रघुनाथ के लिए दे दिए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इसमें इसी परिच्छेद में दधी चूड़ा महोत्सव के वर्णन है, अंत लीला के 6वें अध्याय। तो संक्षेप में मैं इनका परिचय आपको देता हूँ। बंगाल के एक अच्छे जमींदार थे गोवर्धन दास और हिरण्य दास। इन लोगों का संबंध इधर नवदीप के ब्राह्मणों से बहुत घनिष्ठ संबंध था, और वे उस समय के नवाब के अंदर में काम करते थे। भारतवर्ष में मुस्लिम और अंग्रेजों ने शासन किया है, तो आपस में लोगों को फूट डालकर शासन करते थे। कुछ लोगों को जमींदार बना देते थे और साधारण जनता से टैक्स वसूलते थे, और वो टैक्स जमींदार लोग देते थे मुगलों को, मुसलमानों को और अंग्रेजों को भी। तो वही परंपरा चलती रही। तो जो छोटे तबके के लोग थे वो जमींदारों के अधीनस्थ थे, और जमींदार लोग मुगलों मुसलमानों के अधीन थे। तो ऐसे ही गोवर्धन दास और हिरण्य दास नाम के दो जमींदार, यद्यपि कायस्थ वंश के थे, उनकी किसी जाति विशेष को जमींदार नहीं बनाते थे। ऐसे तो अधिकांश क्षत्रिय थे, कुछ कायस्थ, जहाँ के जो पॉपुलर फेमस व्यक्ति है उसके जी में 10-20-50 गांव दे देते थे कि आप 100 गांव के मालिक हो। तो ये लोग कायस्थ परिवार के थे। कायस्थ भारतवर्ष में श्रीवास्तव, लाला, वर्मा, पता नहीं क्या क्या टाइटल है, लेकिन आज भी बड़े इंटेलिजेंट माइंड के माने जाते हैं। एक बार 15-20 साल पहले भारत के आईएएस अफसरों की जाति परख गणना की गई, तो 68% केवल कायस्थ थे आईएएस पूरा भारत में, और बाकी 32% में सभी जाति के। तो बहुत तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो इनको जमींदार बना दिया गया। राय रामानंद भी कायस्थ परिवार में आए थे। तो ये लोग वसूल करते थे, और वसूल करने के बाद टैक्स इनको लगभग 12 लाख साल में बचता था, प्रति साल 1 लाख। तो फिर बाद में ये सब लंबी कथाएं हैं। इनके पुरोहित थे जदुनंदन आचार्य, जो महाप्रभु के बहुत निकट थे। तो जदुनंदन आचार्य स्वाभाविक वैष्णव थे, केवल ब्राह्मण ही नहीं, और इनसे निकट का संबंध था। उधर नवदीप के अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर आदि से, महाप्रभु के पहले से ही, तो इनके लिए ये दोनों एक ठाकुर वाड़ी बनाए थे, भगवान की मूर्ति स्थापित करके छोटा सा मंदिर और बागीचा रहने के लिए अपने गुरु जी के लिए। तो ठाकुर वाड़ी में ये रहते थे। एक बार अवसर पाकर हरिदास ठाकुर उनके ठाकुर वाड़ी में रुके थे, जब रघुनाथ छोटा थे 3-4 वर्ष के। तो स्वाभाविक खेलते हुए रघुनाथ कभी ठाकुर वाड़ी में जाते, गांव के निकट ही था। तो एक ऐसे संत का जीवन के प्रारंभ में दर्शन हुआ जो नाम जपता रहता था हमेशा। तो रघुनाथ उनके निकट बैठकर नाम सुनते रहते थे खेल छोड़कर, और हरिदास ठाकुर के मुख से नाम सुनते सुनते रघुनाथ में एक संस्कार हो गया। कई महीनों तक रुके थे वहाँ। तो बचपन से ही वो हरिदास जी के मुख से, जदुनंदन आचार्य के मुख से महाप्रभु के विषय में सुने थे। तो एक बार जब महाप्रभु अपने परिक्रमों के साथ उधर बंगाल में आए थे संन्यास के बाद, तो रघुनाथ भी इच्छा किए कि हम उनका दर्शन करेंगे। तो उनके पिता व्यवस्था कर दिए जाने के लिए, उनको एक पालकी पर सेवकों के साथ बड़े ऐश्वर्य के साथ भेजा गया। रघुनाथ महाप्रभु के चरणों में गिर कर बहुत कातर प्रार्थना किए। जब महाप्रभु शांतिपुर में आए थे, शांतिपुर गंगा स्नान करने आए थे उस समय मिले, और वहाँ 10 दिन उनको रहने का अवसर मिला महाप्रभु के साथ। तो साथ में रहना, प्रसाद लेना निकट से, ऐसे रघुनाथ से महाप्रभु का एक निकट संबंधी रूप में भी था कि उनके पिताजी से मिश्र जी, जगन्नाथ मिश्र का बहुत निकट संबंध था। और इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये लोग ब्राह्मण सेवी थे, खास करके नवदीप के ब्राह्मणों का जीविका चलाते थे, जिनको जो भी कमी हो उसको देते थे। 20 लाख आज से 500 वर्ष पहले इनका साल का प्रॉफिट था, 1 लाख रुपया वेतन, सोने के मुहर होते थे, और 12 लाख रुपया इनको बचता था। ऐसे बहुत कलेक्शन करते थे। बाद में तो इन पर एक क्लेम भी लगा कि ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेता है और कम राजा को देता है। सब लंबी कथाएं हैं। तो महाप्रभु अपना संबंध भी बताए कि आप के पिताजी से हमारा बहुत निकट का संबंध है। तो वहाँ रहने के बाद रघुनाथ को एक ऐसे सुख की अनुभूति हुई कि महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो महाप्रभु से कहे कि प्रभु अपने साथ रख लीजिए, कहना नहीं पड़ा, रघुनाथ हृदय से यही चाहते थे। तो महाप्रभु सर्वअंतर्यामी कहने लगे, रघुनाथ ऐसी भावना मत रखो, ये बातुल मत बनो, ज़्यादा बोलक्कर मत बनो। लोगों को समझाते रहते हो कि इस प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए, निवृत्ति में रहकर भजन करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसी में कहे हैं कि मरकट वैराग मत करो, लोगों को दिखाने के लिए मरकट वैराग मत करो, यथा जो विषय भुगतान आ सकता है, या मरकट वैराग ना कर लोक देखाइया। तो फिर महाप्रभु उनको भेज दिए। जब वे आ गए तो इनका मन नहीं लगता था, लेकिन चलते समय महाप्रभु एक बात कहे थे कि कृष्ण आपको जल्दी उद्धार करेंगे, कोई ना कोई उपाय तो करेंगे ही। लेकिन रघुनाथ के मन में आ रहा था कि क्या उपाय करेंगे, मेरे साथ इतने सिक्योरिटी लगे हुए हैं, कब मैं आ पाऊंगा। तो महाप्रभु कहे, जब मैं वृंदावन से घूम कर लौटूंगा तो उस समय आप आ जाना। तो मानो रघुनाथ पूछना चाहते कैसे आऊंगा, तो कहते ठीक उसी समय कृष्ण कोई उपाय सृजन करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, जब मैं वृंदावन से घूम कर आऊंगा तो आप पुरी में आ जाना। रघुनाथ की अवस्था देखकर महाप्रभु ऐसा आश्वासन दिए। तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो जब भी कभी कभी मौका मिलता था, पता भी लग गया कि महाप्रभु लौट कर आ गए, लेकिन रात्रि उठी अकेला चलीला पलाइया, दूरे है थे पिता तारे आनीला धरिया। कभी वो रात में उठकर भागते थे तो लोग पकड़ लेते थे। यही मते बारे बार पलाय धरिया ने, बार बार भागे, बार बार पकड़े गए। तब तार माता कहे तार पिता सने, तब उनकी माता उनके पिता से कही कि पुत्र बातुल हैला, इहा रख बंधिया, ए बहुत बुलक्कड़ हो गया और पागल हो गया है। बातुल का मतलब कि ऐसे कुछ भी करने लगता है बिना विचार के, तो इसको बांध कर रखना पड़ेगा, रस्सी से नहीं, इसको विवाह के द्वारा बांधना पड़ेगा। युवकों को बांधने की रस्सी है स्त्री। तार पिता कहे तार निर्भीड़ हैया, ठीक है, कोशिश किया गया और युवक रघुनाथ का ही विवाह कर दिया गया। अभी तो 16-17 वर्ष के थे तभी विवाह कर दिया गया, फिर भी नहीं रह पाए। कृष्णदास कविराज कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम आये सब बांधित नारिकेल तार मन। उनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी धन का, और स्त्री भी परम सुंदरी अप्सरा सम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदरी स्त्री थी, लेकिन ये सब बांधित नारिकेल जार मन, जिनके मन को ये सब नहीं बांध पाया। तो दंडी रो बंधने तारे राखीबा के मते जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडित। कहते हैं कि जिनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त है उनको रस्सी में बांध कर क्या रखा जा सकता है। किसी पिता को यह अधिकार नहीं है कि किसी के प्रारब्ध को निरस्त कर दे अपने बेटे को। तो चैतन्य र चंद्र कृपा हैया छे जिहारे, चैतन्य र चंद्र बातुल के राखी ते पारे। जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो चैतन्य प्रेम में पागल है, उसको कौन रख सकता है। तो एक दिन रघुनाथ के मन में आया, रघुनाथ तबे रघुनाथ किछु विचारीला मने, नित्यानंद गोसाई पास चलीला हर दिने। चलो महाप्रभु से तो ये मिलने नहीं देंगे। नित्यानंद प्रभु का अभियान चलता रहता था बंगाल में, प्रचार प्रीचिंग पार्टी, तो चलो उनसे मिलते हैं। मन में सोचे तो अपने पिता से जा कहे कि नित्यानंद प्रभु से मिलकर आता हूँ। ठीक है, उतना तो सेवकों के साथ जाने का छूट था, अकेले भागने का छूट नहीं था। तो पानी हाटी ग्राम में पाईला प्रभु र दर्शन, कीर्तनिया सेवक संग यार बहु जन। तो पता लगा कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में आए हैं गंगा के तट पर, और बहुत से कीर्तन करने वाले भक्त उनके साथ हैं। तो जब पहुंचते हैं रघुनाथ, उस समय का सीन वर्णन कर रहे हैं। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, बसी आछे जेन कोटि सूर्योदय करे। नित्यानंद प्रभु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे एक चबूतरे पर, और ऐसा लग रहा था कि वो सूर्योदय कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रकाश निकल रहा था। तले ऊपरे बहु भक्त हैया छे बेष्टित, देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मित। रघुनाथ नित्यानंद प्रभु के सौंदर्य को देख कर चकित हो गए, दूर से दंडवत किए। दंडवत हैया से ही पड़ी लाकत दूरे, दूर पर सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, तो उनके साथ जो सेवक आए थे कहते हैं रघुनाथ, सुनी प्रभु कहे चोरा दिल दर्शन, आए आए आजी तोर करीमु दंडन। अरे चोर, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन दिया, आओ आओ आज मैं तुमको दंडित करूंगा। इतने दिनों तक तुम छुपा रहा, आज दर्शन दिया, आए आए आज तोर करीमु दंडन, आज मैं तुमको दंडित करूंगा। प्रभु बुलाए तेहो निकट ना करे गमन, नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं लेकिन रघुनाथ आ नहीं रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु स्वयं चलकर आकर सिया तार माथे प्रभु धरिला चरण, जब पकड़ कर खींचे तब रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों पर गिर पड़े। सिर उनके चरण पर रख दिए। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय रघुनाथ कहे किछु हैया सदय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कौतुकी नित्यानंद प्रभु है, उनको बड़ा आनंद आता है और स्वाभाविक नेचुरल दयावान है, सहजे दयामय स्वाभाविक दयालु है। रघुनाथ पर दया करते हुए कहे निकट न आयुष चोरा भाग दूरे दूरे आजी लाग पाया छी दंडी मु तुम्हारे। तुम निकट नहीं आ रहे हो चोर, तुम भाग रहे हो, आज पा गया हो तुमको निश्चित दंडित करूंगा। क्या दंडित करेंगे तो सुना रहे हैं दंड। दधी चिड़ा भक्षण करा हम मोर गणे, ये मेरे भक्त लोग हैं उनको दही चूड़ा खिलाओ। सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने, यह दंड है। कह रहे हैं कि आज हमारे भक्तों को दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा, रघुनाथ को इससे बढ़कर खुशी क्या होगी, सेवा का अवसर मिला। कभी कभी महाप्रभु कहते थे पूरी में कि जो अधिक सेवा करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। दंड और पुरस्कार दोनों एक ही जैसा है, तो क्या पुरस्कार मिलेगा? भक्त लोग कहते थे कि क्या पुरस्कार मिलेगा, गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो अधिक धूल इकट्ठा करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, तो क्या पुरस्कार मिलेगा? भक्त लोग पूछते थे पहले बता दीजिए, तो कहते थे जो ज्यादा धूल बटोरेगा उसको सभी भक्तों को खिलाने का अवसर दिया जाएगा, उसको सभी भक्तों को प्रसाद पवाने का अवसर दिया जाएगा, यह उसको पुरस्कार मिलेगा। इधर नित्यानंद प्रभु खिलाने को दंड कह रहे हैं, तो पुरस्कार दंड में अंतर नहीं है। जो भगवान की तरफ से पुरस्कार मिले या दंड मिले दोनों भक्तों के लिए एक समान है। तो एक बार तो गुंडीचा मंदिर मार्जन में महाप्रभु ही सबसे ज्यादा धूल बटोर दिए, सब कंपटीशन में लगे थे लेकिन महाप्रभु का ज्यादा हो गया, तो कहे कि भाई पुरस्कार तो मैं तो सन्यासी कहाँ से दे सकता हूँ, लेकिन चलो जाकर वो आनंद बाजार से भिक्षा करूंगा। तो भिक्षा करना नहीं पड़ा, सभी दुकानदार लाकर दे दिए और नरेंद्र सरोवर के तट पर खूब उत्सव किए, महाप्रभु खिलाए सबको। तो ये रघुनाथ को आनंद आ गया सुनकर, सही क्षण निज लोग पठाई न ग्रामे, अपने सेवकों को भेजे कि भक्ष द्रव लोग सब ग्राम होते आने, जाकर गांव से चिड़ा दही गुड़ शक्कर सब लाओ, चिड़ा दही दुग्ध संदेश आर चीनी कला सब द्रव आनाइया चौधरी के धरीला। सब सेवक गए और दौड़कर चिड़ा दही दूध संदेश, दूध की बनी हुई मिठाइयां है बंगाल में, चीनी केले और अन्य खाद्य सामग्री सब ला करके रख दिए चारों तरफ। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसी तेला गिला लोक असंख्य गणन। झारा भंडारा है, कोई इनविटेशन तो देना नहीं है, सब आ रहे हैं। जितने लोग सुने कि दही चूड़ा का महोत्सव है सब आने लगे। कितने लोग आए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कौन गिन रहा था, असंख्य थे, काउंटिंग नहीं था। आर ग्रामांतर अते सामग्री आनी ल सत दुई चारी होला तहा अनाई ल। और जब खाने वाले जुट गए तो और आने लगा, गांव से आसपास के गांवों से सारे खाद्य पदार्थ आया। बड़ा बड़ा मृत कुंडिका आनीला पांच साते, बड़ा बड़ा मिट्टी का घड़ा पांच सात लाया गया। एक विप्र प्रभु आगे चिड़ा भिंजाइए ताते, वहां चिड़ा को भिंगोने लगा। तो चिड़ा पानी में नहीं भिंगवाया जा रहा है, साफ करके रखा गया है। चीड़ा को बर्तन में रखकर उस पर एक ठाई तप्त दुग्ध चीड़ा भिंजाइला, गर्म करके दूध डाला जाता था, दूध से पानी से नहीं। अधिक छानीला दही चीनी कला दिया और फिर उसमें से आधे चीड़ा को चीनी और केलों के साथ मिलाया गया दूध में भिंगाने के बाद, और आर अधिकम और आधा को घना वृत्त दुग्धे छानीला, खूब गाढ़ दूध और चंपा काला चीनी घृत कर्पूर ताते दिला। तो उसको गाढ़े दूध में विशेष रूप से भिगोया गया और केला चांपा कलक क्या कहलाता है समझ आए? क्या अच्छा केला ही है मिलाया, तब चीनी घी और कर्पूर डाला गया। धुती परी प्रभु यदि पिंडा ते पसीला, सात कुंडी पिप्र तारे आगे ते धरिला। नित्यानंद प्रभु जब स्नान करके गंगा जी में अपना वस्त्र बदल चुके फिर बैठ गए, तब ब्राह्मण लोग उनके सामने बड़े बड़े पात्र, सात बड़े पात्रों में रखे। चबूतरा ऊपर जत प्रभुर निज गड़े, बड़ा बड़ा लोक बसीला मंडली रचने। अब बैठने लगे गोलाकार मंडली करके सब लोग नित्यानंद प्रभु को घेर कर। तो उसमें कुछ लोगों का नाम रख देते हैं, महंतों का नाम, जनरल और असंख्य की कहां गिनती करेंगे। रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव पुरंदर, संजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, होर कृष्ण दास, उदाहरण दत्त आदि जत निज गण ऊपर बसीला सब के करे गण। तो इस प्रकार सबको ऊपर चबूतरे पर बिठाया गया। सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आईला, और जो लोग बड़े बड़े प्रसिद्ध भट्टाचार्य पंडित थे वो आए, मान करी प्रभु सवारे ऊपर बसाईला। जो अपने गणों में नहीं है, बाहर के भी पंडित आ रहे हैं, प्रसिद्ध विद्वान लोग, तो नित्यानंद प्रभु उनको सम्मान पूर्वक ऊपर बिठाते हैं। दुई मृत मंडिका सवार आगे दिला, एक एक दुग्ध छिड़ा और दही छिड़ा कैला। फिर उनके सामने दो दो मिट्टी के पात्र रखे और एक में छिड़ा के साथ गाढ़ा दूध और दूसरे में दही के साथ छिड़ा। आर जत लोक सब चौतरा तलाने, मंडली बंधे बसीला तार नागराने। और लोग भी उस चबूतरे के नीचे मंडली बनाकर बैठे, और एक एक जनारे दुई दुई होला होलना दिला, दही चूड़ा दुग्ध छिड़ा दुई ते भिजाइला। सबके लिए बर्तन दिया गया, मिट्टी का पात्र, सब में दही और अलग दूध से भिंगा हुआ चूड़ा। कौन कौन विप्र ऊपरे स्थाने न पाया, किसी किसी को मिला ही नहीं जगह आसपास। तो दुई होला चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गिला, तो ये लोग गंगा के तट पर गए अपने पात्र लेकर, तीरे स्थान ना पाया। अब चबूतरा पर जगह नहीं मिला, नीचे नहीं मिला, तट पर नहीं मिला, तो पाया आर कत जन, कुछ लोग जिनको जगह नहीं मिला, जले नामी दधी चिड़ा करे भक्षण। गंगा जी में खड़ा होकर पानी में अब जगह ही नहीं है। केहा ऊपरे केहा तले, केहा गंगा तीरे, बीस बीस तीन ठाई परिवेशन करे। तो एक एक ग्रुप में बीस बीस लोग परिवेशन करने वाले थे, तीन जगह, चबूतरे पर, नीचे और जल में भी, सब जगह सर्विस होने लगा। हेना काले आईला तथा राघव पंडित, राघव पंडित का गांव है पानीहाटी का, सुंदर मंदिर भी है। तो वो सुबह अपना श्रृंगार उंगार करके प्रसाद वसाद बना करके नित्यानंद प्रभु और उनके गणों का पूरा प्रसाद बन चुका था, भोग भी लग गया। अब बुलाने के लिए आए कि यहाँ कीर्तन के रस में है, उनको खिलाया जाए, बिना सूचना के इधर उत्सव कर रहे हैं। तो राघव पंडित जब आए तो हंसी ते लगीला, देखी हैया विस्मित, बाप रे क्या हो रहा है। वो तो अपने टीटी के श्रृंगार में पूजा में लगे थे, उनको सूचना ही नहीं था। तो आ करके देख रहे हैं और देख कर कहेंगे क्या, हंसने लगे। निशक्री नाना मत प्रसाद अनिला, प्रभु आगे दिया भक्त गड़े बाटी दिला। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के पकवान जो बनाया गया था उसको अब तो कुछ बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु के पास जो भगवत अर्पित प्रसाद था उसको ला दिए और सामने रख दिए कि ये क्या होगा। तो कहे कोई बात नहीं, भक्तों में बांट दीजिए। प्रभु कहे तोमा लागी भोग लगाई ला, आ तुम ही यहाँ उत्सव करे घर घरे प्रसाद रही ला। राघव पंडित कहते हैं कि सरकार ये क्या हो रहा है, मैं आपके लिए भोजन तैयार किया, श्री विग्रह को श्रृंगार करके उनको अर्पित किया और आप यहाँ उत्सव में लगे हुए हैं और हमारा भोजन उसी तरह पड़ा हुआ है। तो प्रभु कहे एक द्रव्य दीने करिए भोजन, अभी तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी बाद में खाएंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी तो खाएंगे, दिन में खाएंगे, और इतना भोजन चल रहा है, दोपहर तो हो ही गया था रघुनाथ में भी, रात्रे तुम्हार घरे प्रसाद करी मु भक्षण, चलो कोई बात नहीं दोपहर हो गया तो रात में खाऊंगा, अब चिंता मत कीजिए। तो कहे कि ऐसा क्यों कर लिए, तो कहे देखो राघव से कह रहे गोप जाति आमी बहु गोप घर संगे आमी सुख पाई यही पुली न भोजन है। कह रहे कि मैं गोप जाति गोपों के साथ जमुना के पुलिन पर खाने का आदत है, कभी कभी जमुना तट पर हम लोग गोचारण में खाते थे और उस सुख का आस्वादन कर रहा हूं गंगा के तट पर पुलिन भोजन का आनंद ले रहा। तो राघव बसाइया दो कुंड बैठो आप भी खाइए, वो आए थे बुलाने उनको बैठा दिए, कुंडी देवाईला राघव दिविध छीड़ा ताते भिंजाईला उनको भी दिया गया दो पात्र में। सकल लोकेरा छीड़ा पूर्ण जबे हैला तबे ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे आनीला। अपने निकट में एक खाली जगह रखे थे और एक महाप्रभु के लिए लगाकर सब चीज रखे थे, तो जब सबको सर्विस हो गया तब ध्यान में महाप्रभु का स्मरण कर रहे नित्यानंद। महाप्रभु आईला देखी नित्याई उठीला, और लोग नहीं देख रहे, नित्यानंद प्रभु देख लिए पहले, तो उनके सम्मान में खड़े हो गए, तारे लैया सवार चिड़ा देखी थे लागिला। और जितने लोग थे नित्यानंद प्रभु उनको महाप्रभु को लेकर दिखा रहे हैं घनीभूत चिड़ा, किस तरह लोग आनंद में लिए हैं। अभी खाना प्रारंभ नहीं हुआ है, सकल कुंडीर होला चिड़ा एक एक ग्रास महाप्रभु मुखे देना करी परिहास। थोड़ा सा लेने का सब में से दही चिड़ा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मुंह में देते हैं और हंस रहे हैं, हासी महाप्रभु आर एक गास लिया एक और खाए तार मुखे दिया खाई हसिया हसिया। महाप्रभु भी हंस रहे हैं नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे हैं। यही मत निताई बोले सकल मंडले डंडा या रंग देखे वैष्णव सकले, सारे मंडली में घूम रहे हैं नित्यानंद प्रभु और उनके साथ महाप्रभु भी, लेकिन वहां पर उपस्थित वैष्णव लोग देख रहे हैं कि निताई कब क्या रहा है, ये क्यों नहीं चालू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि करिया बेड़ा यहा केह नहीं जाने, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवान है, उसमें से जो बहुत भाग्यशाली लोग थे वो देख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं घूम रहे हैं, इनके साथ महाप्रभु भी है। तबे हासी नित्यानंद बसीला आसने चारी कुंड आरोया चिड़ा राखीला दाहिने, सब जगह घूम करके फिर आए अपने आसन पर और आसन दिया महाप्रभु तहा बसाइला। दुई भाई तबे चिड़ा खाई थे लागिला, तो देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हिला कतक कतक भाव अवेश प्रकाश करिला। फिर सबको कह दिए आज्ञा दिला हरि बलि कर भोजन स्टार्ट करो, हरि हरि ध्वनि उठी भरी लो भुवन। तो सब लोग हरि हरि बोलने लगे, हरि हरि बलि वैष्णव करे न भोजन पुलिन भोजन सवार हिल स्मरण। सबको पुलिन भोजन का स्मरण, सभी महाप्रभु कृष्ण के परिकर थे तो सबको याद आ गया। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथ भाग जत कैला अंगीकार। ये नित्यानंद प्रभु का अद्भुत उदार स्वभाव है, रघुनाथ दास गोस्वामी के सौभाग्य कि उनके भोजन को महाप्रभु स्वीकार किए। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौन जन महाप्रभु आनी कराए पुलिन भोजन। अब अकेले बलराम क्या पुलिन भोजन करेंगे, कृष्ण के बिना नहीं आनंद आएगा। तो बुला लिए महाप्रभु को और महाप्रभु को लाकर पुलिन भोजन का आनंद लिए। श्री रामदास आदि गोप प्रेमा विष्ट हैया, जब पुलिन भोजन चल रहा है तो जो गोप थे उनको भी वो आवेश आ ही गया। गंगा तीरे जमुना पुलीन ज्ञान हैला, उसमें रामदास से आदि कुछ भक्त थे जो गोप वेश में आ गए और जमुना का आवेश कर लिए गंगा में। फिर महोत्सव सुनी पसारी नाना ग्राम हैते, और महोत्सव चल रहा है तो आसपास के दुकानदार लोग अपना ठेला लेकर पहुंच गए। चीड़ा दही संदेश कला आनी लीते, बेचने के लिए आ गए। भाई उत्सव हो रहा है तो कहीं कुछ सामान घट जाएगा, तो जब दब लिया इसे सब मूल्य कर करी लय, तार दब्य मूल्य दिया ताहते खाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी लेकर आते थे उसको खरीद लेते थे, और केवल नित्यानंद प्रभु के गण और ब्राह्मण ही नहीं, वहां जो भी आया उसको खिलाया गया। कहते हैं कि कौतुक देखिले आई ला जत जत जन, कुछ लोग तो तमाशा देखने के लिए आ गए क्या हो रहा है। सेई चीड़ा दही कला करी ला भक्षण, जो तमाशा देखने आए उनको भी चीड़ा दही खिलाया गया। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, चारी कुंडेर अवशेष रघुनाथ दिला। फिर जो अवशेष था रघुनाथ को दिए, आर तीन कुंडिकाए अवशेष छील, ग्रासे ग्रासे करी विप्र सब भक्त दिला। फिर तीन कुंडी में और भक्तों को बांटा गया प्रसाद। पुष्प माला विप्र आनी प्रभु गले दिला, चंदन आनिया प्रभु सर्वांग लेपिला। फिर माला फूल चंदन एक ब्राह्मण लेकर आया, उसे नित्यानंद प्रभु के गला में डाला और चंदन लगाया। सेवक ताबूल लैया करे समर्पण, हसिया हसिया प्रभु करे चरवण। इसके बाद नौकर लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के नौकर पान लेकर आए, उसको नित्यानंद प्रभु को दिए। नित्यानंद प्रभु तो कौतुकी है, तुरंत खा लिए, आनंद से हंस रहे हैं, पान चबाने लगे। माला चंदन तामुल शेष जे आछिल, श्री हस्ते प्रभु ताहर सवारे बाटिल। फिर और जो बचा उसको भक्तों को बांटा है नित्यानंद प्रभु स्वयं। आनंदित रघुनाथ प्रभु रे शेष पाइया, अपना अर्गर सह खाइला बटिया, जो बचा उसको बांट कर खाए। तो यही तो कहिनु नित्यानंद र बिहार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चीड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति जार। तो ये नित्यानंद प्रभु के बिहार की लीला कही गई, जिसके चीड़ा दही महोत्सव के नाम से विख्यात है। इसी में फिर राघव पंडित के घर का उत्सव है, शाम को कैसे कीर्तन हो रहा है, विस्तार के भय से मैं इसको छोड़ रहा हूँ बीच में। फिर रघुनाथ के साथ जो रिलेटिव है उसको करा, तब जब सबको खिला लिए, शाम के समय राघव पंडित के घर पर खूब कीर्तन हुआ, महाप्रभु भी रुके, वहां भी भोजन हुआ, इसके बाद रघुनाथ भी रुके हुए थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य कृपाते से नाही भाए मने, तबे सबे आशीर्वाद करे पाऊ चैतन्य चरणे। सभी लोग वैष्णव लोग खुश हैं रघुनाथ पर, तो कहते हैं कि आपको चैतन्य का चरण प्राप्त हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, इसमें क्या डाउट है। कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, भगवान कृष्ण के चरण कमल का गंध जिस व्यक्ति को मिल गया, ब्रह्म लोक आदि सुख तार नहीं भाए। जिसको श्री कृष्ण के चरणों का गंध मिल गया, उसको ब्रह्म लोक के में प्राप्त होने वाले भी सुख महत्वपूर्ण नहीं होते। स्वर्गिक सुख की क्या बात है, संसारिक इस प्राकृत जगत के खासकर मर्त लोक में पृथ्वी लोक के सुखों की क्या बात कहा जाए। श्री कृष्ण के चरणों का गंध जिसको मिल जाता है, चरण कमल का, उसको ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नहीं भाए। कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नहीं भाए। यो दुस्त्यजान सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशक, जहो जिह मलवत उत्तम अशोक लालसा। भागवत के श्लोक कोट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। जब राजर्षि भरत के त्याग की कथा कहे तो लास्ट में कहते हैं, पूरा भरत प्रसंग जड़ भरत प्रसंग कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशक, जिन्होंने अपने दुष्टज स्त्री को, सुंदरी पत्नी को, पुत्रों को, सुहृद नाते रिश्तेदार रिलेटिवों को और सम्राज्य पूरा भारतवर्ष को सबको जहउ जुहई व मलवत उसको ऐसे छोड़े जैसे कोई खेतों में शौच करके चला आता है और कभी नहीं विचार करता कि उसको कीड़े खा रहे हैं कि वो उस बारिश हो रहा है, सड़ गया, सूख गया, क्या हो रहा है, कभी विचार नहीं करता अपने शौच मॉल पर। वैसे राजर्षि भरत ने अपने राज्य को छोड़ा। क्यों छोड़ा? उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक भगवान की लालसा मन में थी। उस लालसा के कारण उन लोग दुस्त्यज स्त्री पुत्र परिवार बैंक बैलेंस मान प्रतिष्ठा पद पोजीशन सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, मलवत त्याग किए। जहो जुहै वो मलवत, उत्तम श्लोक लालसा। तो ऐसे रघुनाथ की स्थिति हो गई महाप्रभु के गणों के आशीर्वाद से। तबे रघुनाथे प्रभु निकटे पुलाइया, प्रभु माने नित्यानंद प्रभु, तार माथे पद धरी कही पे लागिला। रघुनाथ आते ही प्रणाम किया तो अपना चरण उठाकर उनके सिर पर रख दिए। तारे माथे पद धरी, उनके सिर पर अपना चरण रखते हुए नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, तुम्हें जे कराइला यही पुली न भोजन, तुम्हारा कृपा करी गौर आइला आगमन, गौर कैला आगमन, तुम्ही जे कराइल यही पुली न भोजन, तुम्हार कृपा करी गौर कैला आगमन, तुमने जो ये पुलिन भोजन कराया छिड़ा दही उत्सव, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए महाप्रभु यहाँ आए और तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण किए। तो कृपा करी कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, महाप्रभु भी आकर खाए, नित्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण। यहाँ राघव पंडित के मंदिर में भी कीर्तन में भाग लिए, यहाँ भी भोजन किए। तुम्हारा उधारी पे गौर आइला आपने, तुम्हारा उद्धार करने के लिए गौर यहाँ आ गए। छुटी लग तुम्हार जत विघ्ना दिबंधन है, अब तुमको कोई विघ्न नहीं है, सब समाप्त हो गया। स्वरूपेर स्थाने तुम्हार करिवे समर्पण, भविष्यवाणी कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, अनाउंस पहले ही। अंतरंग भृत बलि राखिवे चरण, स्वरूप दामोदर के गणों में तुम्हारा स्थान होगा, नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। और अंतरंग भृत बोलकर एकदम सीक्रेट प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में तुम जाने जाओगे, महाप्रभु के अंतरंग भक्त होगे। ठीक है, अब क्या करना है, तब तो चलो अभी। कहते नहीं, निश्चिंत है या जा आपन भवन, तुम एकदम कंफर्म हो गया, सीट रिजर्वेशन हो गया है कंफर्म, अब घर जाइए, टाइम आएगा। निश्चिंत है या जा आपन भवन, अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण, बहुत जल्दी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, निश्चित चैतन्य का चरण मिलेगा। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराई लो नित्यानंद प्रभु, और भक्तों से कहे इसको आशीर्वाद दीजिए। तार सबार चरण रघुनाथ बंधी लो, सबके चरण पर रघुनाथ घिरे। तो इस प्रकार प्रभु आज्ञा लैया वैष्णव आज्ञा हैला राघव सहित निवृत्त युक्ति करीला। तो अब सबको प्रणाम किए, इसके बाद राघव जी को बुलाए, राघव पंडित को, रघुनाथ दास गोस्वामी। और एकांत में युक्ति करी सप्त मुद्रा सोना तोला साते, सौ मुद्रा और सात तोला सोना नित्यानंद प्रभु को मैं देना चाहता हूं। कैसे दिया जाए? तो निवृत्त दिला प्रभु भंडारी रहा थे, तारे निशे दिला प्रभु ये दे ना कही बा। जो नित्यानंद प्रभु का सेवक था उसको दिया गया, और राघव पंडित और रघुनाथ दोनों कहे कि अभी नहीं बताना है, निज घरे जाबे जबे तबे निवेदिला, जब वो घर पहुंच जाएंगे तब कहना कि ये रघुनाथ आपके लिए दक्षिणा दिया है, भोजन का दक्षिणा है, सौ मोहर और सात तोला सोना। उनको घर पहुंचने के बाद देना, बीच में मत देना। इसके बाद राघव उनको घर में दर्शन करने के लिए गए, मंदिर में ठाकुर का दर्शन कराए, माला चंदन दिए और प्रसाद दिए, आप घर ले जाइए प्रसाद, राघव पंडित दिए। इसके बाद प्रभु संगे जत महंत, तो रघुनाथ कहते हैं, फिर रघुनाथ राघव पंडित से कहते हैं, ऐसे ही मैं कागज रख लिया समूर रहा। तो रघुनाथ फिर कहते हैं एक अंत में कि प्रभु कुछ और कहना चाहते हैं, कहने हाँ बोलो। तो प्रभु संग जत महंत वृत आश्रित जन, तीन डिवीजन है, महाप्रभु के अंतरंग संग बनाने वाले महंत, वृत सेवक और भी आश्रित जन जितने लोग हैं, पूजित चाहते आमी सबार चरण, सबको मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। जानते हो दक्षिणा का विज्ञान ब्राह्मण लोग बताते हैं कि किसी के अन्न को स्वीकार करना कितना भारी रिस्क है, और ऐसे फालतू में जो है उसके लिए कुछ वेतन भी चाहिए ना, वो तो खा गया तुम्हारे ऊपर कृपा करके, पता नहीं कैसे कैसे कमा कर रखे हो, और एक तुम्हारे अन्न को चबाने में दांत घिसा है तो उसको दांत घिसाई चाहिए फीस, और उसको पचाने में भी धर्म खर्च होगा, तो इसलिए कुछ दक्षिणा देना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं देना चाहता हूँ, सबका चरण पूजना चाहता हूँ। कितना कितना देना चाहते हैं? 20, 5, 10, 12, 10, 5 है, तो चार डिवीजन बतलाते हैं, 20, इसके बाद 5, 10, 15, फिर 12, 10, 5 वैरायटीज है, 20, 15, 12, 10 और 5, 5 वैरायटीज हो गया, 20, इसके बाद 15, 12, फिर 10, 5। मुद्रा देह विचारी जत जत योग्य है, जो जैसा योग्य है उसके अनुसार दक्षिणा देना है, एक और है। और कुछ महंतों को न्यू डिबोटी को एक जैसे दे देंगे तो कैसे होगा, उसको ज्यादा खर्च है ना। तो कह रहे हैं कि सब लेखा करी राघव पास दिला, तो अब लिस्ट बनाना पड़ा ना, कौन कौन महंत है, कौन उससे, अब पांच डिवीजन करना है तो उसके अनुसार लिस्ट बनाए राघव पंडित। जान नामे जत राघव चिट्ठी लिखाई ना, सबका नाम लिखकर उसके सामने पैसा लिखा गया किसको कितना देना है। तो ये सब हो गया। इसके बाद एक सत मुद्रा और 16 तोला द्वय, 100 मुद्रा और 2 तोला सोना, 7 तोला नित्यानंद प्रभु को दिए थे, और 100 मुद्रा और 2 तोला सोना पंडित तेरा आगे दिलक करीला बिना राघव पंडित के लिए दिए, कहे आपके लिए 100 मुद्रा और 2 तोला सोना, विनय करके प्रार्थना करके दिए। तार पद धूलि लैया स्वगृह आईला, नित्यानंद कृपा पाया कृतार्थ मानीला। अब राघव को दे करके अब घर लौटे तो नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा का अनुभव करते हुए अपने कृतार्थ अनुभव करने लगे। तो इस प्रकार आज के उत्सव का इतना ही प्रसंग है। अभी इसी अध्याय में उनके वैराग्य की भी कथा है, घर छोड़कर निकले, कैसे महाप्रभु के पास गए, तो प्रसंग भी विषयांतर होगा और समय भी हो गया। तो इसलिए दही चूड़ा महोत्सव का जो एजिटिज कृष्णदास कविराज लिखे हैं उसका मैं अनुवाद करने का कोशिश किया। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जिज्ञासा
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत धन्यवाद। इसमें जो प्रसंग था जो चूड़ा दही फेस्टिवल में, इसमें मुख्य शिक्षा क्या है, क्यों ये उत्सव बनाए और हम वैष्णव के लिए क्या शिक्षा है?
वैष्णव के लिए यहाँ मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए शिक्षा है कि जो भगवान के प्रचार में भक्त लोग हैं उनका भरण पोषण करना गृहस्थों का कर्तव्य है। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ के द्वारा उत्सव कराकर समाज को यह शिक्षा दे रहे हैं कि केवल घर बैठे बैठे अपने परिवार में कुटुंब में मस्त मत रहो, ये प्रचारक भक्तों का भी टेक केयर करना चाहिए एक। और दूसरी बात कि कभी कभी सामूहिक वैष्णव भोजन का एक अलग आनंद आता है, जिसको नित्यानंद प्रभु वहाँ गंगा के तट पर एक सामूहिक भोजन किए। ऐसे तो पर्सनल एक एक दो दो को कोई भुलाकर अपने घर खिला सकता है, लेकिन इसके साथ नित्यानंद प्रभु ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि सामूहिक रूप से भक्तों को भी खिलाना चाहिए और सबका उचित सम्मान करना चाहिए। रघुनाथ के द्वारा कराकर यह नित्यानंद प्रभु शिक्षा दिए, ये तो नित्यानंद प्रभु की तरफ से हुआ। और रघुनाथ के तरफ से शिक्षा दिया जा रहा है कि गृहस्थ को बड़ा उदार भाव से प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव सेवा स्वीकार करना चाहिए, भार रूप में नहीं। 28 प्रकार के नरकों में वर्णन है कि जो गृहस्थ किसी अतिथि को देखकर या साधु वैष्णव को अपने यहाँ आया देखकर आंख भौं सिकुड़ता है, मुंह सिकुड़ता है, कहाँ से आ गया खाने के लिए, उसको स्पेशल नरक की व्यवस्था की गई है। उसको स्पेशल जमदूत नरक भेजते हैं। गृहस्थी साधारण नहीं है, बहुत भारी रिस्क है। और सातवें स्कंद के 14वें अध्याय में आप पढ़ लीजिए, अगर उस अध्याय को विवाह से पहले पढ़ लिए तो यही निर्णय होगा कि इस जाल में कौन पड़े होगा ही नहीं। और गृहस्थों के लिए इतनी दायित्व है कि घर गृहस्थी में रहे अपने पुत्रों में और बाहर के लोगों में कोई भेद न करे। क्या भेद है नारद जी करे, कोई भेद नहीं है, उनको भी सम्मान करे। यहाँ तक कि घर में आने वाले चूहे, खेत में खाने वाले चिड़िया, किसी को भी अधिकार है, वो कहाँ जाएगा, वो गृहस्थ के ही कमाई पर डिपेंड करता है। उसको बीस देकर मारना नहीं चाहिए, नारद जी कह रहे हैं, उसको भी खिलाना चाहिए। आने वाले भिक्षुकों को, साधुओं को, सबको सम्मान करना चाहिए। और कभी कभी विरक्त महात्माओं को अपने घर बुलाकर अपने कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, अथवा घर से समय निकालकर विरक्तों के आश्रम में जाकर सत्संग करना चाहिए। ये है उस 14वें अध्याय में वर्णन है, गृहस्थ सदाचार का वर्णन है। और समय निकालना चाहिए तीर्थ यात्रा के लिए, पवित्र जगहों में भजन के लिए। यहाँ तक कहते हैं कि क्या जरूरत है तो घर गृहस्थी में पड़े लोग थोड़ा मोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का एक आदत है धन संग्रह करके फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना ज्यादा, तो वैसे ही जब तीर्थों में धाम में जाकर भजन किया जाता है तो उसी प्रसंग में नारद जी कहते हैं कि 1000 गुना फल मिलता है। तो अगर 16 माला कोई गिरिराज परिक्रमा करते जप लिया तो एक एक माला एक एक 1000 गुना 16000 माला जप हो गया। तो ऐसे गृहस्थों को फिक्स डिपॉजिट के लिए कभी कभी धाम में जाकर भजन करना चाहिए, ये भी कहा गया। तो यहाँ पर मुख्य शिक्षा गृहस्थों के लिए है कि सामूहिक रूप से वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, यथार्थ सम्मान करना चाहिए और इस प्रकार अपने सदाचार में रहना चाहिए। तो इस उत्सव के द्वारा नित्यानंद प्रभु 2-3 महत्वपूर्ण शिक्षा दिए हैं। और भक्तों को सामूहिक रूप में भी खाना चाहिए, अकेले अकेले खाते हैं लेकिन भक्तों के संग में दूसरा रस है।
और एक शिक्षा, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बैरागी, अप्सरा जैसे पत्नी को और इंद्र के समान ऐश्वर्य को त्याग करके उन्होंने महाप्रभु से मिलने के जा रहे थे, कितने बैराग्य, फिर भी महाप्रभु उनको चरण नहीं दिए। इसका मतलब है कोई प्रत्यक्ष रूप से जाकर के भगवान से नहीं मिल सकता जब तक कोई वैष्णव की कृपा,
वैष्णव की कृपा से। हाँ, तो ये तो उनके बैराग्य के विषय में नित्यानंद प्रभु कहती है कि उनका मन चैतन्य के चरणों में लगा था, इसीलिए वे इंद्र सम ऐश्वर्य और स्त्री अप्सरा सम उनके मन को नहीं बांध पाया, क्योंकि वो चैतन्य के चरणों में बातुल हो चुके थे, पागल हो चुके थे। तो ये वैष्णव की कृपा से ही महाप्रभु का चरण मिल सकता है, ये भी है। इतने वैष्णव लोग आशीर्वाद दिए, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए तो उनको आशीर्वाद दे दिए कि आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, आप निश्चिंत घर जाओ। तो इस तरह एक संबल मिलता है, वैष्णव से आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं लिया जाता है, एक ये भी ध्यान देना चाहिए। आशीर्वाद प्रसन्न होकर वैष्णव का हृदय देता है, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है तो स्वतः आशीर्वाद निकलता है। आए थोड़े देर के लिए मिले, झटका से कहे आप आशीर्वाद दीजिए, बस हाथ पकड़ कर सिर पर रख दीजिए या चरण रख दीजिए, उससे कभी कभी वैष्णव लोग रंज भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता है आपको, अभिषिक्त भी कर सकते हैं। सेवा से प्रसन्न करके वैष्णव के रोए से, एक एक रोआ से आनंद आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी कभी जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो सोचता है मैं क्या दूं इसके लिए, क्या दूं, तो अपने पास सामर्थ्य नहीं रहता है तो भजन करने वाला भगवान से कहता है प्रभु इस पर आप विशेष कृपा कीजिए, बड़ा स्रोत स्रोत से दिलवा देता है। और महाप्रभु अपने लीला में बार बार दिखाए हैं कि वैष्णव की कृपा से कुछ भी संभव है, कुछ भी, और डायरेक्ट कृपा करते ही नहीं, यही हर लीला में दिखाए हैं कि वो वैष्णव के थ्रू कृपा करते हैं। जैसे महाराज प्रताप रुद्र से मिलने की बात आई तो स्वयं तो निग्लेक्ट कर दिए, कहे राजा से मिलना और वेश्या से मिलना बराबर है, देखिए तमाशा, लेकिन मिले। तो सब लोग कह रहे थे, बारी बारी से कह रहे थे, कभी राय रमानंद, कभी सार्वभौम भट्टाचार्य, कभी कोई, कभी कोई, कभी काशी मिश्र, सब लोग। महाप्रभु एक दिन कह दिए कि अब लगता है कि ईश्वर जगन्नाथ उस राजा पर विशेष कृपा करेगा, क्योंकि आप वैष्णव लोग जब चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये होगा। अभी सूचना मिला कि वो राजा राजपाट छोड़कर विरक्त जैसा रहेगा, जो राजा नाम संज्ञा है इसके कारण वो दूषित है, महाप्रभु नहीं मिल पाएंगे, तो चलो अब बैरागी हो जाएंगे। तो ना 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, महाप्रभु कहते ना ऐसे योग्य व्यक्ति को राजा रहना ही चाहिए। तब कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रभु आप दर्शन नहीं देंगे तो आत्महत्या। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, आप ऐसी बात नहीं है, आप वैष्णव लोग जब चाहते हैं तो कुछ भी संभव है, तो और मिले भी। अब जब उनको सिखाया गया कि आप गोपी गीत गाओ महाप्रभु आवेश में आएंगे, और आए भोरीदा जना कहकर उनका आलिंगन भी किए बहुत देर तक, और जान भी गए कि प्रताप रुद्र है, तब भी दुखी नहीं हुए, उनके सौभाग्य की सराहना की। मिले ना मिले। और ऐसे ही एक बार भगवान, क्या नाम था उनका, राय रमानंद के पिताजी का, भावानंद राय, तो उनके साथ भी एक ऐसा केस हुआ, उन राजा का लड़का नाराज हो गया था उनके पुत्र के साथ, और उनको फांसी पर झुलाने का निर्णय ले लिया। सभी भक्त लोग दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास आते थे, महाप्रभु कुछ कीजिए कुछ कीजिए, डेट निश्चित हो गया कि कल फांसी होगा, सारे भक्त लोग आ गए कि आप ही रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो महाप्रभु कहे कि लगता है कि अब पूरी में तुम लोग नहीं रहने दोगे, यही पंचायत करने और पैरवी करने के लिए मैं आया हूँ, घर छोड़कर आया भजन करने के लिए, लेकिन अब मैं अलालनाथ जाऊंगा, पूरी नहीं रहूंगा। भक्त लोग बड़ा चिंतित है, लेकिन महाप्रभु देख लिए कि सारे भक्त चाह रहे हैं तो सहायता तो करना ही पड़ेगा। तो काशी मिश्र जी रोज मिलने के लिए आते थे, जिनके घर में महाप्रभु रुके थे, वो गंभीरा, और काशी मिश्र महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे, पुरोहित। तो जब वो आए तो कहे कि मिश्र जी अब मैं पूरी नहीं रह पाऊंगा। देखिए कैसे इनडायरेक्ट पैरवी कर रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि आप भक्त लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है, कौन आपको हरकत करता है, कहते वो दुनिया भर के संसारिक बात मुझको सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, बहुत भूमिका बनाकर बतला रहे हैं। वो कौन सी बात प्रभु, कौन कौन ऐसा है उसको मना किया जाए। देखो ना भवानंद का लड़का राजा के साथ कुछ गड़बड़ किया, उसको फांसी की सजा हो गई, सभी लोग किसका नाम रखे, सार्वभौम राय रामानंद सब लोग पीछे पड़े स्वरूप दामोदर तक। अब मैं नहीं रह पाऊंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं यह बात आपसे कहने के लिए सोचा था, अब मैं निश्चित कल चला जाऊंगा। कि नहीं प्रभु आप ऐसा चिंता मत करें, आपका विषय ही नहीं है, वे लोग गलती की आपसे कहकर, ठीक नहीं आप रहिए, आपसे अब कोई नहीं कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो काशी मिश्र को रोज महाराज प्रताप रुद्र शाम को प्रणाम करने आते थे विदाउट फेल, निश्चित उनकी चरण सेवा करते प्रणाम करके तब सोने जाते थे। तो महाप्रभु से मिलकर जब काशी मिश्र अपने घर गए तो महाराज आए, कहे जानते हो एक सूचना मिली है, अब महाप्रभु पुरी में नहीं रहने वाले हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे तुम्हारा बेटा भवानंद के लड़कों को फांसी देने की सजा सुना दिया, सारे वैष्णव उनको परेशान कर रहे हैं, और सन्यासी आदमी रुकना नहीं चाहते हैं, डिस्टर्ब है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, महाप्रभु के एक क्षण के निवास के लिए सारा धन सारी संपत्ति न्यौछावर है, वो क्या कितना लिया है कोई बात नहीं, सब माफ हो जाएगा। तो जाकर घोषणा किए महाराज प्रताप रुद्र की, नहीं अब उनका सारा जो लोन है माफ, उनको सर्विस नौकरी भी नहीं करना है, दूनी वेतन दी जाएगी। और इस तरह से पैरवी करते थे, सब कुछ करके खत्म कर दिए, डायरेक्ट महाप्रभु नहीं किए, इनडायरेक्ट करा दिए। तो भक्तों के बाद बारे कहते हैं, सुबह में जब सूचना मिला कि महाप्रभु वो सब माफ हो गया और उसको दूना भी, ये तो गलत हुआ, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, उसको उचित दंड देना चाहिए था। जब पूछ रहे हैं कि जब पुलिस वाले ले जा रहे थे तो बारीनाथ क्या कर रहा था, सारे लड़कों का अरेस्ट कर लिए थे, बारीनाथ तो बिना नाम जब किए रहता नहीं है। कहते हैं कि हाँ वो जमीन पर रेखा खींचकर जप करता था। पूछ रहे थे क्या उस समय उसकी स्थिति कैसी थी, उस और उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी पूछते हैं और सब कुछ पूछते हैं, जो महाप्रभु से मिलते हैं उनका सारा समाचार पूछते हैं, ठीक है ना ऐसे है। तो ये महाप्रभु ये दिखा रहे हैं अपने लीला में कि एक दूसरे के आशीर्वाद से, परस्पर सौहार्द से, स्नेह से, बहुत से बड़ी 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 विपत्तियां टल जाती हैं शुभकामना से। तो वैष्णव की कृपा भगवत प्रेम के लिए अपेक्षित है, तो पक्का भगवान की कृपा डायरेक्ट किसी किसी जीव पर रेयर करोड़ों में एक पर आती है, लेकिन वो कृपा वैष्णव के थ्रू निश्चित आती है। भगवत कृपा, भागवत कृपानुगामी है, भगवत कृपा महत कृपानुगामी है, महत कृपा के महत पुरुषों के थ्रू वो कृपा आती है। जैसे नल कुबर मणिग्रीव पर कृपा करना हुआ तो नारद जी के कृपा के थ्रू वो कृपा आई और उनको वासुदेव सान्निध्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे महत कृपा भगवत कृपा अनुगामी है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से भक्तों की कृपा अपेक्षित है, अवश्य चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ नहीं नहीं महात्मा चरण रज कहा मोजा पहनकर घूमते हैं तो कहाँ रज मिलेगा। अगर जो वैष्णव मोजा पहना है तो उसमें तो रज है ही नहीं, तो रज का अभिषेक कैसे करेगा। तो वहां पर वर्णन किए हैं जड़भरत जी कि वो महत्पाद क्या है, देखिए मूल भागवत श्लोक बोल रहा हूँ, हाँ तो जया गृहद्वार बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तो महत्भिषेकम के नीचे का श्लोक है कि महत महत अभिषेक क्या, टीकाकार लोग लिंक जोड़ते हैं उसमें लिखते हैं कि ऐसे महत पुरुषों के बीच में, तो ग्राम्य कथा विघात कैसे श्लोक है, मति सतीम यक्षति वासुदेवे तो लास्ट में है, महत पुरुषों के मुख से जो कथाएं होती हैं प्रथम, अक्षर भूल रहा हूँ, तत्र जब महापुरुषों के मुख से जो कथाएं होती है तो वो कथा ग्राम्य कथा को विघात करता है और मती को सती करके वासुदेव के पास ले जाती है। तत्र पर है, तत्र देखिए मूल भागवत तत्र एक सेकंड, इसमें दसवां अध्याय में है, पांचवा के दस लास्ट में यत्रोदार कथा है, थोड़ा सा एक अक्षर भूला है। संख्या भी नहीं याद आ रहा है, दस के पांच दस कुछ संख्या लास्ट वाला श्लोक है। तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम कथानुवाद जत्रो ज्य तत् से है, प्रस्तुयते ग्राम कथा विघात और इसके बाद मतिम सतिम यष्टि वासुदेव है। तो इसमें यह कहा गया कि एक प्रश्न होता है, जैसे प्रश्न अभी किए कि वैष्णव के चरण रज में अभिषेक करना चाहिए, तो वो अभिषेक क्या है, मिल गया श्लोक नहीं मिला। तो जत्रो तमश्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, जत्रो तमश्लोक गुणानुवाद, जत्र का अर्थ यही लिखते हैं कि महापुरुषों के चरणों में जत्र जहां वो अभिषेक क्या है, तो जत्रो तमश्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। अच्छा, और तीसरा फिर भूल रहे हैं, सार्वभौम जी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा विद्वान था, बहसू था, विद्वान का बहस बांधता था, तो कहता था कि मेरे पास दो क्वालिफिकेशन है, द बेस्ट, जो किसी के पास नहीं है। एक है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, बहुत तेज स्मरण शक्ति है, दूसरा क्या है यार, भूल गया। पहली की से ना बतलाया कहने में पहले को भी गायब कर दिया। यही हाल हम कथाकारों का है, बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन भूल जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र, राजा और जीवती ये विश्वास के पात्र नहीं है। तो इन तीनों को क्या, राजा कितना हूं अनुकूल है लेकिन कब नाराज हो जाएगा कोई पता नहीं है, और शास्त्र खूब पढ़े हैं कब भूल जाएगा कोई पता नहीं, ज्योति गोद में है फिर भी विश्वसनीय नहीं है। हाँ, यत्रो तमसलो गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम कथा विघात। देखिए इसके ऊपर का श्लोक है, रहु गरै तपसा न जाति न चेजया निरूपणा गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। कहते हैं जो महत्पुरुषों के चरण रज के अभिषेक से जो भगवत प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं, वो वेदों के पाठ से नहीं, न छंदसा, वेद की खूब ऋचाएं याद कर लिए मंत्र, उससे न एव जलाग्नि, न जल में प्रवेश करके ठंडा जल में तपस्या करने से, न अग्नि तापने से, न सूर्य के किरणों में खड़ा होकर तपस्या करने से, ये सब उनसे नहीं मिलता है। और न छे जया इजया पूजा पाठ जग निर्वाह पराद, निरुपराद माने दान देने से, गृहद्वार घर द्वार छोड़कर सन्यासी होने से, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना महत्पुरुष के चरणों के रज का अभिषेक किए ये भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो महत्पुरुष के चरण रज का अभिषेक का माने, तब कहते हैं ऐसे महत्पुरुषों के बीच में यत्रो तमश्लोक गुणानुवाद, महत्पुरुषों के समाज में जब भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवाद होता है तो प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। तो उस समय जब कथाएं होती है तो ग्राम्य कथा जो है, ग्राम्य माने विषय, ग्राम माने विलेज नहीं या विलेजर नहीं, ग्राम्य का अर्थ है विषयी लोगों का जो संसारिक चर्चा, ग्राम में कथा ना कही वे, ग्राम कथा ना सुनी वे, महाप्रभु कह रहे हैं ना, विषयों की चर्चा समाप्त हो जाती है अपने आप। निषेध के मारो अनुदिनम मुमुक्षु, अगर कोई मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति इस तरह से उत्तम श्लोक की कथाएं महत्पुरुषों के संग में सेवन करता है, निषेध मारम अनुदिनम माने बार बार, तो मतिम सतिम, मति जो वेश्या बनी हुई है इधर उधर भटक रही है वो सती हो जाती है, और जब सती हो जाती है तो यह क्षति वासुदेव, वे अपने पति को पकड़ लेती है, वासुदेव को पकड़ लेती है। ये प्रोसेस है, महापुरुषों के मुख से कथा सुनकर मति सती होती है। और देखिए एक बात, यहाँ 11 के 26 अध्याय के पुरुरा महाराज के उद्गार में भगवान स्वयं उद्धव जिसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का, कि कैसे मति भगवान में लगती है। तो हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात संगो न कर्तव्य, बहुत चीज बोले, बहुत बोलने के बाद लास्ट में कहते हैं ततो दुसंग मुत्सृज्य, दुसंग को छोड़कर, गलत संग उत्सृज्य छोड़कर, सत्सु सज्जत बुद्धिमान, बिना बुद्धि के तो भक्ति होगी नहीं भाई, पक्का डल माइंडेड कोर्स नहीं है भजन। वह बुद्धिमान, सत्सु सज्जत बुद्धिमान, बुद्धिमान साधुओं का संग करे, तो सत्सु सज्जत साधुओं के संग में आवे तो वहां क्या लाभ होगा। तो संता एतस छिन्दंती, संत लोग काट देते हैं, छिन्दंती उसके क्या मनोव्यासंग, जो बहुत दिनों से जकड़ा हुआ मन में जो आसक्ति है घर से, भोग से, संसार से, तो मनोव्यासंगम विशेष रूप की आसक्ति को काटते हैं। उनके पास कौन सा हथियार है, कौन सा तलवार है, उक्ति भी अपने बाणी से, अपने प्रवचन से जन्म जन्मांतर के जकड़ी हुई आसक्ति को काट डालते हैं, ये हथियार उनके पास है। मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी अपनी बाणी से, अपने प्रवचन के माध्यम से उसके जकड़ी हुई आसक्ति को काट देते हैं। इसलिए दुसंग को छोड़कर सत्संग में आना चाहिए। संगम माने आसक्ति, गलत लोगों के साथ आसक्ति न रखकर साधुओं के संग आसक्ति रखें, और उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे वो काट देता है। यही पर कह रहे हैं, भरत जी भी कह रहे हैं, हरिम तदीहा कथन सुताभ्याम लब्ध स्मृति या प्रतिपद माध्यम तस्मा नरो संग सुसंग जात। यहाँ जलभरत भी कह रहे हैं तस्मात, इसलिए नर असंग सुसंग जात, असंग को छोड़कर सुसंग में जात, अज्ञाना सिनैहा व विविक्र मोह, ज्ञान रूपी असी से, असी माने तलवार से उसके अज्ञान को काट डालते हैं। हरिम तदीहा कथन सुताभ्याम, तब वह भगवान की कथा सुनने लगता है और तब लब्ध स्मृति उसको याद हो जाता है कि मेरा स्वरूप कृष्ण भक्ति है। आयात परी अति पार मध्वन, वह वैकुंठ के रास्ते का पथिक हो जाता है, वो परम पद को चला जाता है, उसको स्मृति लब्धवा स्मृति प्राप्त हो जाती है। यह तरीका है, उसके पास हथियार है, उक्ति भी अपनी बारी से काट डालता है। तो इसलिए मति को सती बनाने के लिए उत्तम श्लोक के गुणानुवाद करने वाले महापुरुषों के बीच रहना चाहिए। यह है उनकी कृपा, यह है उनका चरण अभिषेक। हाँ हाँ, उनकी कृपा, उनके मुंह से निकली हुई प्रवचन, यह राजा। और ये तो सूक्ष्म अर्थ है, मुख्य अर्थ वो भी है कि चरण रज लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल इसको ही धारण कर ले और चरण। एक जगह तो वैष्णव अपराध में लिखा गया है उसकी टीका में कि वैष्णव लोग तो सहज दयालु हैं, वो किसी के प्रति नाराज ही नहीं होते, अगर कोई कुछ कह भी दिया तो जानते हैं कि बेचारा अपने स्वभाव से व्यवहार कर रहा है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं, सहज दयालु होते हैं, तो फिर अपराध लगता कैसे है। वैष्णव का मतलब और प्रतिशोध की भावना उनके अंदर नहीं होती। जहां भी भागवत में जो सहने की क्षमता है वैष्णव को, उसी को साधु कहा गया। चाहे देवर्षि नारद को दक्ष श्राप दिया और चाहे चित्रकेतु को पार्वती, दोनों जगह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसे साधुता कहते हैं। नारद जी ने जवाब में कोई श्राप नहीं दिया, चित्रकेतु महाराज पार्वती को श्राप नहीं दिए, तो दोनों जगह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह है साधु का लक्षण। तो किसको परीक्षित को अथवा दुर्वासा अम्बरीश के प्रति इतना व्यवहार किए हो, उनको कोई क्रोध नहीं है। तो वैष्णव जो क्रोध करके ढोता रहे उसके तो वैष्णवता ही नष्ट हो जाएगी। तो ढोता ही नहीं तो फिर अपराध कैसे लगता है? तो वहां सूक्ष्म अर्थ किया गया है कि उसके हृदय अपराध को रिजेक्ट कर देता है लेकिन उसका चरण नहीं माफ करता। जिसमें वैष्णव की भक्ति देने की क्षमता है वो रज रिजर्व करके रखता है, जब तक वहां नहीं आएगा तब तक माफ नहीं होगा, वहां आना पड़ेगा। एक जो सोर्स है भक्ति को उर्वरक शक्ति मिलती है वैष्णव चरणों में, वैष्णव के चरण रज, वैष्णव के चरण जल, चरण धोन और वैष्णव के भुक्त भोग शेष, ये तीन महाबल कहा गया। वैष्णव के उच्छिष्ट, वैष्णव का चरण रज और वैष्णव की चरण धोन। तो जहां चरण दो चीज तो चरण से ही मिलता है, रज और चरण धोन, तो वहां पर भक्ति बढ़ाने वाला ये उर्वरक खाद है जो ज्यादा लहरा देती है भक्ति को। तो वहां तो आना पड़ेगा तब माफ होगा, हृदय नहीं स्वीकार करता, इधर तो झेक बेचारा मूर्ख है, कोई बात नहीं अपने व्यवहार से व्यवहार किया, लेकिन उसको गला भी लगा लेगा, गाली देने वाले को भी गला लगा सकता है हृदय। लेकिन जहां अपराध हुआ है और जब तक वहां झुककर चरण को नहीं मना लिया तब तक माफ नहीं होता। इसलिए यह प्रोसेस है कि उसके चरण में जाकर गिरो और उसको स्पर्श करो, उसको मनाओ, वो नाराज बैठा है, तो उसको मनाने के बाद तब माफ, एकदम क्लियर। हृदय नहीं दुखी होता। अम्बरीश क्या दुर्वासा पर नाराज हुए? एक साल तक उपवास खड़े रहे, दुर्वासा बेचारे जल रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, बल्कि सुदर्शन चक्र से कहे कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी शुभ कर्म किया है, जो भी हरि प्रीति के लिए कुछ किया है, सब कुछ निछावर है इस ब्राह्मण के लिए, इसको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, बदलाइए। प्रतिशोध की कोई भावना ही नहीं। लेकिन तब तक भी माफ नहीं हुआ जब दुर्वासा उनके चरणों में आकर गिर पड़े, एकदम चरण पकड़ लिए, तब फूल माफ, नो डीज, सब खत्म। अब सब खत्म हो गया, दुर्वासा को आना पड़ा उनके चरणों में। भगवान भी माफ कर सकते थे लेकिन प्रोसेस का अतिक्रमण नहीं किए, कि जाना पड़ेगा, अहम भक्त पराधीन हो, वहां जाना पड़ेगा। ये है प्रोसेस, ठीक है। अरे जय श्री।